मंदे कृतेन्द्रे वरम जडं जागुकरोति सन्दिदं तं पतन्दरसं वृन्दारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभृयं ध्यायेन्ताम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि इति विज्ञाय राधे तं नयामि भजामि राधाम् स्मिताश्याम बदामि राधाम् करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गति उपदेशामृत के अंतर्गत ये भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को समझाने के लिए एक एक उपदेशामृत के एक एक श्लोक में प्रत्येक शब्दों का की व्याख्या है। ये साधारण आदमी कैसे किस प्रकार से इन सब का अपने जीवन में व्यवहार कर सकता है और भजन पथ में अग्रसर हो सकता है। पहले अत्याहार का बताया भक्त विनोद ठाकुर हैज एक्सप्लेन ऑफ ऑल दिस श्लोक एंड इन ईच श्लोक ईच वर्ड ही हैज एक्सप्लेन दैट जनरल पर्सन कॉमन पर्सन कैन यूज ऑल दिस थिंग इन हिज लाइफ एंड ही कैन गिव अप ऑल दिस थिंग्स अत्याहार एंड ऑल बेक्स वेरी इजिली एंड इंटरफिंग शुद्ध भक्ति प्योर भक्ति अत्याहार के संबंध में बोल रहे हैं। अति भोजन वी शुड नॉट ट्राई टू डू अति आहार ओवर ईटिंग अत्यल्प बहुत थोड़ा भोजन ये भी खराब है। अत्यंत कम भोजन ये भी भजन भजन के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक आदमी ने देखा जो रोटी खाने और ये सब खाने से चावल प्रसाद पाने से नींद आती है तो उन्होंने बंद कर दिया ये सब और बहुत खाने लगे बहुत कम फल भी दूध भी सब धीरे धीरे छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद पाकस्थली सूख गई और ऐसा हुआ कि वो मरने में अब कोई चीज उनको हजम होने नहीं और कुछ दिनों के बाद में वो मर गए। तो ऐसा करने से क्या होगा? दिन रात पेट में दर्द हो रहा है, कराह रहे हैं, नाभि सूख रही है, तो क्या भजन होगा? तो ऐसे यहाँ पर लोग उपस्थित हैं ऐसे भाई अत्यंत भोजन करने वाले भी और भोजन नहीं करने वाले भी। इसलिए करें कि युक्त भोजन इत्यादि आहार होना चाहिए, दोनों अत्यंत अधिक नहीं कम नहीं। अति निद्रा भी वर्जनीय है और अत्यंत कम निद्रा नहीं तो पागल हो जाएंगे कुछ दिनों के। हमारे यहाँ पागलों की भी कमी नहीं है, पागल नहीं है कुछ सोते ही नहीं तो कुछ दिनों में पागल हो जाएंगे। एक एनीबॉडी टेकिंग टू मच ओवर ईटिंग also it is very harmful for health and if you are taking so much very little then it will dry and it will cause so many problems and thus always pain in your stomach, pain is here and he cannot do bhajan. Adhik sona bhi we should try to give up adhik sona to sleep more अपने लिए जो सुविधाजनक हो वो। एक आदमी सात हाथ लंबा चौड़ा है, सात हाथ मोटा चौड़ा, उसके लिए जो भोजन होगा, और हमारे लिए दुबले पतले लोगों के लिए एक भोजन परमित आहार में है। इसलिए अपने अपने शरीर अपने अपने के अनुरूप जो जिसके लिए जरूरी है, तब साधारण रूप में 5-6 घंटे बहुत है सोना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और उसको धीरे 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 कम करें, और भजन करने पर अपने आप वो कम जाएगा। किसी भी हालत में 6 घंटे से अधिक मत सो। इन एनी वे वी शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर्स, बट बाय डूइंग भजन इट मे बी रिड्यूस टू 5-4, एंड फॉर उत्तम अधिकारी नो कंडीशन, कोई भी वो अब दिन रात सो सकते हैं, नहीं भी वो सो सकते हैं। अल्प निद्रा द्वारा योग है ना, योग नहीं होता, जोर जबरदस्ती करेंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जो नियमित रूप में हरिनाम करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। इसका भी हम लोगों ने अनुभव करके देखा है जीवन में, इसलिए जोर से नहीं, धीरे धीरे धीरे। युक्त भोजी, युक्त चेष्ट, युक्त नेत्र, युक्त जागृत व्यक्ति योग सिद्धि होती है। एवरीथिंग शुड बी युक्त अकॉर्डिंग टू हिज ओन बॉडी एंड हेल्थ, व्हाट ही हेल्थ परमिट्स ही शुड अडॉप्ट ऑल दी मेथड्स। इट इज फॉर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दे कैन स्लीप, हरिदास ठाकुर लाइक ऑल अदर गोस्वामीज 1/2 hour 24 minutes a day only sleeping, sometimes that was not sleeping at all, इसलिए उनके लिए वैसा है। किंतु साधारण व्यक्ति के लिए साधारण हेल्थ में 6 घंटा, साधारण रूप में 5 घंटा, ये किसी भी स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में किसी को नहीं सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए, शाम को नहीं सोना चाहिए, सूर्यास्त होने के समय में नहीं सोना चाहिए, इन एनी वे। सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट, मैंने 3:30-4 बजे के बाद में नहीं सोना चाहिए, 4 बजे के बाद। किंतु गर्मी और सर्दी का विचार होता है, जे सूर्योदय के ऊपर में विचार। तार प्रकार यही जे हमारा हमार इंद्रिय सकल इंद्रियार्थे विचरण करते छे, किंतु आमि शुद्धात्मा यही सकल कार्य करना बुद्धि ते विषय सकल ग्रहण करेंगे। ये ज्ञानी लोगों के लिए बतलाएगी, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, इसलिए ये सोना खाना पीना ये सब कौन कर रहा है, ये शरीर मैं इससे निर्मल हूं, ये ज्ञानी लोग विचार करें। और भक्त लोग ऐसा नहीं, उपदेश यद्यो ज्ञान पक्ष अधिक कार्य प्रवृत्ति दिखाए तथापि तो यह तात्पर्य भक्तानुकूल नहीं देता, इसका तात्पर्य भक्ति अनुकूल लेना चाहिए। गीता चरम श्लोक है जो शरणागत उपदेश है, तहा लख करिया समस्त इंद्रिय भर के भगवत प्रसाद बोलिया कर्मांग और ज्ञानांग त्याग कर आचरण कर लिया शुद्ध भक्ति सिद्ध है। गीता का जो चरम श्लोक है शरणागति का उपदेश, उसको लक्ष्य करके इंद्रियार्थ को भगवत प्रसाद इंद्रियों के अर्थ को भगवत प्रसाद समझना चाहिए। कैसे? प्रसाद भोजन करना जरूरी है, भोजन नहीं छोड़ सकते कभी, तो भोजन कैसे करें? ठाकुर जी का निवेदित जो प्रसाद है उसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। महाप्रसाद ए गोविंद नाम ब्रह्म निवेश स्वल्प पुण्यवतांग राजन विश्वास में, उसको महाप्रसाद का महाप्रभु या कृष्ण का निवेदित भगवत निवेदित प्रसाद को आराध्य वस्तु की भांति ग्रहण कर मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। हमको बिना सुने रहा नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं भगवान की कथाएं सुने, भगवत संबंधी कथाओं को सुने, और भगवत कथाओं को आराध्य मन करके जब सुन रहे तो ये कहो कि मैं भगवान की कथाओं की सेवा कर रहा हूं। देखना भी अनिवार्य है, किंतु वैष्णव का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, भगवत विग्रह का दर्शन करो और कहो मैं आपकी दर्शन रूपी सेवा कर रहा हूं, आप कृपा करके हमको दर्शन दें। महाप्रसाद समय भी यही, हम जो कर खा रहे हैं देख रहे हैं उसको तो दाल भात तरकारी, किंतु प्रसाद से प्रार्थना हम लोग करें जी हे प्रसाद प्रभु आप अनुग्रह करें जो हम प्रसाद को अनुभव कर सके, ये महाप्रभु का कृष्ण का ये प्रसाद। वही प्रसाद महाप्रभु पाते थे जगन्नाथपुरी में, उनके भक्त लोग पाते थे, रघुनाथ दास पाते थे, और कैसा रसास्वादन करते थे, उनकी सेवा करते थे, और हम लोग को कुछ होता है। इसलिए उस रूप में ग्रहण कीजिए। कोई भी चीज हो, कीर्तन करें तो हम कीर्तन की सेवा कर रहे हैं, कीर्तन हमारा आराध्य देव है ना। वो शेषाग्र पहले श्लोक का विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, और कीर्तन को प्रभु मान करके हम कीर्तन की सेवा कर रहे हैं। इस जब हरि कथा सुने तो हरि कथा को आराध्य मान करके हम उनकी श्रवण से सेवा कर रहे हैं। ये सब चीजें भावनाएं होनी चाहिए। वैष्णव को देखो उनको आराध्य के रूप में देखो, भगवान से भी बढ़कर के उनके भक्त लोग हैं, ये भावना के साथ में उनको देखो। उसे अलग हो गया, ये भक्ति का अनुकूल करके इसको आचरण कर रहे हैं,
इसकी उपलब्धि आत्मा तक जाएगी।
इसलिए भक्ति ये सुलरूप गोस्वामी ने कहा है अनासक्त सबिष्यान यथारहम उपोजी यथ निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते प्राप्तांचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी प्रत्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। प्रभुपाद इसका बहुत उपयोग करते हैं, यथा तथा सर्वत्र गुरु जी भी इसका उपयोग करते हैं। अनाशक्त विषयान विषयों के प्रति अनाशक्त हो करके यथार अहम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे, जितने भी विषय हैं अपने भोग के प्रति अनाशक्त रह करके विषयों से यथार अहम उपयुंजत, हम बिना इनके ग्रहण के जीवित नहीं रह सकते हैं, वो तो लेना जरूरी है, किंतु किस रूप में ग्रहण करेंगे? निर्बंधा कृष्ण संबंधे, कृष्ण के संबंध से यदि उनको हम ग्रहण करते हैं सेवा बुद्धि से, यही परम वैराग्य है। विषयों को छोड़ देने जैसे ही क्या नेति नेति का करके, अरे ये तो रसास्वादन है, ये है बहुत अच्छी चीजें हैं, इनका त्याग करना चाहिए, करते करते महाप्रसाद को भी त्याग कर दिया जाए तो ये भक्ति भी नष्ट हो गई। किंतु महाप्रसाद को भी भोग की दृष्टि से यदि ग्रहण करेंगे तो हमारा कुछ भी उपकार नहीं होगा, ये भी ठीक है। इसलिए सोच विचार करके ये सब चीजों को करना चाहिए। इस श्लोक का दोनों का तात्पर्य बतला रहे हैं। विषय भोग के रूप में मैं भोगता हूं। इस विषय में विषयों को यदि ग्रहण किया जाए तो यह अत्याहार हो जाएगा, किंतु भगवत प्रसाद के रूप में उसको यथा योग्य जितना हमको जरूरत है उसके अनुसार में ग्रहण करें भक्ति के अनुकूल, तो ये वैराग्य है। विशेष भक्ति के लिए ये अत्याहार नहीं होगा। हमको जितने जीवन में रखने के लिए जरूरी है महाप्रसाद को, या महाप्रसाद के रूप में समस्त इंद्रियों के समस्त विषयों को यथा योग्य भगवत प्रसाद के रूप में ग्रहण करें जितना जरूरत है बस, तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। और अच्छा भगवत प्रसाद बोलिया इंद्रियार्थ सरलता सहित स्वीकार कर ले भक्ति पूर्वे युक्त हार हो गए, यही युक्त हार है, युक्त वैराग्य इसे होता है, साधित होता है। यही महाप्रभु का आदेश है कि अनाशक्त होकर के विषयों को भोग करो और कृष्ण नाम करो। अनाशक्त है या विषय भुंज, अनाशक्त है या अनाशक्त मरकट ना वैराग्य करो, लोग दिखाई। और करें प्रापंचिकता बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु, भगवान के संबंधी वस्तुओं को भी, जैसे महाप्रसाद इत्यादि हुआ, इन सब वस्तुओं को प्रापंचिक माइक समझकर उनका यदि प्रत्याग करते हैं वैराग्य के रूप में, तो ये वैराग्य फल दो। महाप्रसाद कोई एक माला ले आया ठाकुर जी का उतार करके और गले में दे लेने लगा किसी को, और वो आदमी उठ करके खड़ा होकर के उसे लस्तम धस्तम पस्तम करने लग गया, जे नहीं लेने, वो दे रहा है वो देने नहीं देगा, तो ये क्या चीज है? अरे भाई ठाकुर जी का प्रसादी माला दे रहा है तो उसको ग्रहण करो, उसमें ऐसा छीना धक्की ऐसा मत करो, धक्का मुक्की ये फल्गु वैराग्य हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, यदि भगवत प्रसाद के रूप में वो आ रहा है माला तो उसको ग्रहण, उसी तरह से कोई भी चीज, किंतु युक्त आहार पूर्वक युक्त के रूप में जितना जरूरत है जीवन धारण करने के लिए उपयोगी उतना ही करो। यदि परमान आ गया और उसके बाद में लड्डू आ गए तो चलने दो, कोई मना नहीं, चलने दो जितना तक चल जाए, तब तक ये भोग हो जाएगा। इसे उचित परिमाण में जितना जरूरत है उसी रूप में ग्रहण करो। भालो भालो भक्ष्य द्रव्य और अच्छा धन आदि जन्य जत कर गया, अच्छे अच्छे भोजन के लिए और अच्छे अच्छे अच्छा धन कपड़ों के लिए चेष्टा मत करो, अनायास लब्ध जो हो रहे हैं उससे करो। विशेष करके जो लोग मठ में कुछ दिन रहने पर जब अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा चावल नहीं बनता और सब नहीं, तो वो लोग देखते हैं कि अब इसमें कुछ दिन के लिए शरीर खराब हुआ, जरा प्रजा महल में घूमे, प्रजा मैंने भक्तों के महल में, अच्छे अच्छे धनी घरों में जाकर चले जाते हैं और वहां पर आदर जत्न तो होगा वहां पर परमान्न खीर लड्डू इत्यादि सब मिलते हैं, वहां पर कुछ दिन भोग को कर करके तब फिर चले जाते, मठ में अच्छी चीज नहीं बनती, मठ में अच्छी चीज बनना भी उचित नहीं। साधारण रूप में जैसे महाप्रभु ने कहा वैसा यदि जीवन धारण कर रहा जाए तो उससे भक्ति सिद्ध हो। और अधिक भालो ना परिवे भालो ना खाइबे, भालो ना खाइबे भालो ना परिवे अमानी मानद है कृष्ण नाम सदा, इसको याद सब समय हम लोगों को रखना चाहिए। यदि सरल सहज रूप में कुछ आ जाती है उनको प्रणाम करके प्रार्थना करते हुए भगवत प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण करो, भोग की लालसा से नहीं। स्वल्प आयास लब्ध, थोड़े से आयास से परिश्रम से या सहज रूप में भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। यही भक्त दिव्य जीवन यात्रा विधि, यही भक्तों के लिए जीवन यात्रा की विधि है, साधारण विधि। जहां प्रयोजन तहां ही आहरण करो, जो प्रयोजन है बस उसी को ग्रहण करो। हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या वैष्णवी को बतलाया जो यहीं पर रहो, तुम्हारे पास में भोजन के लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी कपड़े की, किंतु तुम उतना ही लेना जितना तुम्हारे एक बार के लिए भोजन हो जाए और बाकी को सब लौटा दिया। वस्त्र भी उतना ही रखना, बस एक स्नान करके दूसरा कपड़ा पहन सके और दूसरे को सुखा सके, बस इतना ही, अधिक नहीं तो भजन में बाधा होगी। और ऐसा ही हम देख रहे हैं, अनुभव भी करते हैं। यदि अधिक हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, भजन में बाधा पड़ेगी। अधिक या अल्प आहरण, अधिक या कम कोई वस्तु ग्रहण करने में शुद्ध फल नहीं होता है। ठंडा लग रही है, ठिठुर रहे हैं, और उस समय में जमुना जी में स्नान करेंगे और खाली शरीर आएंगे, लोग कहेंगे वाह कितने भारी, बड़े भारी भक्त हैं, बड़े भारी भक्त हैं। और कुछ दिनों में जब लकवा हो जाएगा तब फिर अब फिर निकल जाएगा सारा जीवन के लिए बैर। इसलिए अपने शरीर के अनुकूल किसी को दिखलाने के लिए बैराग्य, बहुत से लोग हैं ये ठंड लग रही है सब कुछ है, शरीर खोल करके तिलक लंबे लगा करके बड़ी बड़ी माला लगा करके ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, यदि उनको ऐसा हो जाता है कष्ट नहीं होता है तो उनके लिए ठीक है, किंतु जानबूझ करके किसी को दिखाने के लिए वैराग्य मत करो। ये भक्ति का लक्षण नहीं है, इसे भक्ति सिद्ध नहीं होगी। युक्त तो वैराग्य ही भक्ति के लिए सिद्ध होता है। भक्ति के होने पर जो अपने आप विशेष है वैराग्य होता है, वो युक्त तो वैराग्य है, उसके द्वारा भक्ति सिद्ध होती है। अज्ञान कुछ करके लोगों को दिखलाने के लिए कष्ट करके भी उसको हम स्वीकार करते हैं तो ये वैराग्य नहीं, भक्ति का विरोधी है, भक्ति सुख जाती है। माया व्याधियों का वैराग्य ऐसा ही, भक्ति तो होती नहीं, जोर जबरदस्ती वैराग्य करते। इसके लिए गीता में बतलाया गया है कि इसको क्या परम दृष्टवा निवर्तते, जब अत्यंत सुंदर कोई मधुर वस्तु जब मिलती है तो अपने आप जो दूसरी वस्तु में होते हैं निम्न प्रकार की, वो अपने आप हट जाती है अनायास रूप में, उसमें जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। परम दृष्टा निवर्तते, परम कृष्ण बड़े मधुर हैं, बड़े सुंदर हैं, उनके दर्शन से अपने आप विषय सारे जो हैं ये दूर हो जाते हैं, उसको अधिक करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार के भजन के बल से भक्ति हृदय में आने पर अपने आप युक्त वैराग्य होता है। अधिक आहरण से, आहरण माने भोजन इत्यादि करने से, ग्रहण करने से या संग्रह करने से साधक रस के वशीभूत हो जाते हैं और परमार्थ को दूर कर देते हैं। उपयुक्त रूपे संग्रह ना करिले भजन उपाय स्वरूप शरीर रक्षा हो देना, और उपयुक्त रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर की रक्षा नहीं होगी तो भजन क्या करेंगे। कभी कभी कोई ऐसा हो सकता है, मान ले कि जैसे हम 4 बजे उठते हैं, भजन पूरा नहीं, अब वो 2 बजे 2:30 बजे ही उठने लगे तो होगा क्या, कुछ दिनों के बाद में शरीर सिर में दर्द हो जाएगा और धीरे 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 शरीर खराब होने लगेगा, फिर पागलपन जैसा रोग आ जाएगा, फिर संभाल नहीं सकेंगे। इसलिए देख सुन करके शरीर के लिए उपयोगी ये करके यथा योग्य संयम पूर्वक इन चीजों का योग। प्रथम श्लोक में जीवा और उदर का वेग सज्ज करने का जो उपदेश दिया गया है उसका तात्पर्य यह है प्राकृत मनुष्य अर्थात बद्ध जीव सहज ही उत्तम रस सेवन के लिए लालसा युक्त होकर के और क्षुधाय कातर होकर के प्राप्त भोज द्रव्य अत्यंत व्यग्र होकर के सेवनोन्मुखी हैं। प्राकृत लोग साधारण लोग क्या करते हैं, उत्तम रसास्वादित कोई भोजन है या अच्छा कपड़ा है तो बड़ी पानी की लालसा से और खुदा से मन कातर हो जाते हैं। जहां ठाकुर जी का भोग उतरा और देखा जो उसमें रसगुल्ले से भरी हुई कटोरी और परमान्न से भरा हुआ कटोरा है, अब वो छटपट छटपट करने भूख भी लग जाती है बहुत से लोग, और उसके लिए कैसे उसको हटा करके रख दें या कुछ कर लें, ऐसी लालसा होती है और बड़े व्यग्र होकर के सेवन करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ताहे एक टी प्राकृत वेग, इसको कहते हैं प्राकृत वेग। जखन से वेग उठबे तखन तहा भक्ति अनुशीलन द्वारा दमन करेंगे। यदि ये उठना स्वाभाविक है, भोजन करने की लालसा होगी किंतु फिर भी इसको दमन करना पड़ा है भक्ति के द्वारा। महाप्रभु के सामने एकादशी के दिन षड रस सुस्वादु भोजन प्रसाद जगन्नाथ जी का उनके सामने रख दिया शाम को, और महाप्रभु जी क्या कर रहे, उनको प्रणाम किया, परिक्रमा किया, स्तव स्तुति वंदना करते 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 भोर का 4 बज गया और बोले जैसे भाई यहीं पर ठहर करके इनकी देखो, और वो हमें स्नान करके आ करके पूजा पाठ कर करके आन्ही करके और तब तक सूर्य उदय हो गया, बस सब भक्तों को देकर के ये संयम है। ऐसे ही प्रसाद के संबंध में संयम किए जाए, शरीर को जिस रूप में रखेंगे उसी रूप में रहेगा, एक ये भी बात है, इसको भी ठीक रखना चाहिए। अधिक भोगों में हम रहेंगे तो यदि ऐसा जरूरत पड़ा कि कहीं जंगल में रहना है, सर्दी गर्मी है, साधारण रूप में जीवन निर्वाह करके भजन करना है, तो धनी आदमी भोगी आदमी वैसा नहीं कर सकता। जो सितारा पंच होटल में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो यदि हमारे परिक्रमा में जाएं और शेरगढ़ी इत्यादि में यदि पहुंचे जहां कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती है, जहां मैदान में जाना होगा, कोई होटल कोई धर्मशाला ही नहीं मिलेगी, तो वो व्यक्ति परिक्रमा में नहीं जाएगा और नहीं जाने से क्या हो, उसे वंचित हो जाएगा, डर के मारे नहीं जाएगा, ये सब तकलीफ होगी। कुछ लोग चाहते हैं कर नहीं पाए, इसलिए सहज रूप में मन को अपने शरीर को इस प्रकार से रखना चाहिए किसी भी अवस्था में हम भगवान का भजन कर सकें। जखन जे रूप वेग उठबे तखन तहां भक्ति अनुशीलन द्वारा दमन करी। जब भी जो कोई वेग उठता है देखने का, खाने का, सूंघने का, इफ एनी वेग इज कमिंग ट्राई टू सबसाइड इट बाई भक्ति, भक्ति जो के द्वारा उसका उसको दमन। द्वितीय श्लोक में जो अत्याहार, ये पहले श्लोक के लिए कहा, और द्वितीय में अत्याहार त्याग का विधान जो किया गया, तब भक्ति साधक के एक नित्य नियम। पहले वाले में वेग को दमन करने की बात, और दूसरे श्लोक में क्या किया गया, ये नित्य नियम भक्ति के अनुकूल यथा योग्य शरीर को निर्वाह करने के लिए भगवत प्रसाद वो भी युक्त रूप में, केवल भगवत प्रसाद ही नहीं सभी कुछ इंद्रियों के रखने के लिए जो जरूरत है यथा योग्य रूप में उसको ग्रहण, इसको कहते हैं अत्याहार निषेध करना, अत्याहार। और भी इसमें एक बात है, गृही और ग्याही त्यागी के भेद से ये उपदेश दो प्रकार के हैं। गृही और गृहत्यागी दो प्रकार की प्रवृत्ति। कुटुंब भरने के लिए गृही संचय करते पाए, कुछ संचय करेंगे गृही लोग, और धर्म संचित, धर्म उपार्जित, अर्थ व्यय करिया, भगवत सेवा, भागवत सेवा, कुटुंब भरण, अतिथि सेवा, निजे जीवन निर्वाह करते हैं। ये गृहस्थों के लिए बतला रहे हैं। कुटुंब के भरण के लिए, अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए गृही व्यक्ति कुछ संचय कर सकता है, और धर्म द्वारा उपाजित धर्म को ठीक रख करके, अर्थात चोरी, बेईमानी, झूठ, ठगी के द्वारा पैसा उपार्जन करके हम ये सब करेंगे नहीं, धर्म के द्वारा उपार्जित, अर्थ के द्वारा भगवत सेवा, भागवत सेवा माने वैष्णव, कुटुंब भरण, अतिथि सेवा और निज अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों को थप्पा देकर, थप्पा देना जानते हैं, ठक्कर, झूठ बोल करके, चोरी कर, और जैसे तैसे धन उपार्जन करके उसके द्वारा भगवान की सेवा करेंगे और कहेंगे कि क्या जो कृष्ण निमित्त पाप भी धर्म है, ऐसा मत कहो। वो विशेष स्थिति के लिए, विशेष व्यक्तियों के लिए, सबके लिए नहीं है। इसलिए ये ठक करके पैसा ले आ करके अपने उदरस्त कर गए, अपने कुटुंब का भरण पोषण और करने में लगा दिया, गुरु वैष्णव को नहीं दिया, तो क्या होगा? उसी पाप से, अपराध से सदा के लिए नरक भोगना, भक्ति से दूर होना हो जाएगा। इस बात विषय को याद रखो, इसमें विष रहता है। बहुत से लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उनको भक्ति नहीं होती। 10 जन्मों, 10 लाख जन्मों में भक्ति नहीं होगी। और क्या ऐसा जो उनको डर ही नहीं लगता है? वैष्णव से झूठ बोलते हुए, वैष्णव को, गुरु को ठगते हुए, दूसरों को ठगते हुए, जैसे देखो यदि तुम हमको 4 लाख रुपया दिया, ये जो मंदिर हम कर रहे हैं इसके द्वारा हम तुमको गोलोक वृंदावन में जाने का परमिट और क्या
पासपोर्ट
एंड वीसा हम तुमको दे देते हैं, और सचमुच में छपवा करके लिख करके कार्ड दे देते हैं। इससे जगत में कौन चीटिंग बाज, बदमाश, धोखाबाज कौन होगा? उन लोगों को भी लाख जन्म में नहीं होगी, और वो जो ठग रहे हैं उनको भी नहीं होगी। इसलिए ऐसा किसी को मत ठगो, झूठ मत बोलो। कोई झूठ मोल करके किसी से कुछ पैसा लाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा के लिए भगवान यदि इच्छा होगी अपने आप सारी व्यवस्था कर देंगे, ये विश्वास रखो। किसी से भी झूठ बोल करके, बेईमानी करके कोई भी चीज लेकर के अपना कुटुंब भरण पोषण करेंगे, ये मत करो। वैष्णव की सेवा करेंगे, हम ले जा रहे हैं इसे वैष्णव की सेवा करेंगे, उसे वैष्णव सेवा नहीं होगी, भगवान लगने ही नहीं देंगे। और यदि कोई वैसा साधु यदि ले रहा है तो उसको भी समझो ये साधु नहीं है, कोई भी शुद्ध भक्त ऐसा नहीं कहेगा।
आजकल कमाई में धोखा वगैरह, लेकिन कुछ सरकारी नियम ऐसे बन गए हैं जिनका उल्लंघन करना पड़ता है, इनकम टैक्स वगैरह,
वो विशेष बात है, वो विशेष बात है। किसी को ठगने की नियत ना, आजकल बेईमान गवर्नमेंट हो गई है, तब बेईमानी से हम यदि धर्म करते हैं तो ये कोई हर्ज नहीं है। बेईमानी को बेईमानी करना माने क्या? धर्म माइनस माइनस क्या हुआ होता है? प्लस हुआ, इस तरह से। गरीब व्यक्ति भी संचय करेगा, उपार्जन करेगा, जितना जरूरत है उनको अधिकार दिए जाने पर भी, उपार्जन का अधिकार होने पर भी प्रयोजन से अधिक अर्थ संचय करना करने पर
उसके भक्ति साधन में अकृष्ण कृपाला में व्याघात होता है, अधिक वो भी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से अधिक संचय भी अत्याहार है, अधिक उपार्जन करना भी अत्याहार है, उपार्जन भी, क्यों उसमें तरह तरह की बातें आती हैं, उलझन आती है, झगड़े झंझट इत्यादि होते हैं। गृह त्यागी साधक संचय मात्र पर बैठना, गृह त्यागियों के लिए तो ऐसा, प्रतिदिन जो भिक्षा लाभ करवे ताते तुष्ट ना हो गया तार अत्याहार दोष है, जो कुछ मिल जाता है उसे संतुष्ट करके। ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर में और श्रील प्रभुपाद में थोड़ा सा वैशिष्ट है परस्पर। वहां तक तो ऐसा था, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद ने देखा कि आज का समाज इतना विकृत हो रहा है, इस समाज में रह करके भजन करना बड़ा भारी कठिन है, इसमें बच्चे रह करके शिक्षा नहीं पा सकते, कोई भी लोग नहीं पा सकता है, इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे इन लोगों को भी भक्ति का सुयोग मिले, इसलिए अनाधिकारी व्यक्तियों को भी मठ में लाकर, अयोग्य व्यक्तियों को भी मठ में लाया और उनको उचित शिक्षा देने के लिए ये मठ सिस्टम काम किया। इसके पहले हमारे संप्रदाय में ये नहीं चीज थी और इसका ये हुआ धीरे धीरे, जो सब क्रमशः शुद्ध भक्त रहे नहीं, सहज या सखी फेकी ये हो गए थे और धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का विचार ही लुप्त हो चुका था, केवल वैष्णव लोग कम थे। भक्ति विनोद ठाकुर के पहले मरने के बाद में कीर्तन करते हुए मुर्दा को ले जाते और किसी का कोई काम कराने के लिए उनको निमंत्रण करता था, उनको पैसे, जैसे हम लोग कभी 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 बुला करके ले जाते। हम लोग कुछ सुविधावादी हैं इसलिए कि हम लोगों को इसके द्वारा उन लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं प्रभुपाद के पद से, उस लिए नहीं। यदि भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद नहीं आते तो वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान नहीं, इसलिए मठ सिस्टम किया और इसको प्रचार करने की चेष्टा की, किंतु इसमें भी कुछ बुराइयां हैं, हम लोग फिर उन बुराइयों में कुछ आने लग गए। प्रभुपाद ने तो शुद्ध रूप में किया, किंतु उनमें धीरे धीरे जो युक्त वैराग्य, युक्त हार वैराग्य इत्यादि, इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रयोग होने लगा, इसलिए खूब शुद्ध वैष्णव लोग इनके विचारों को जान करके इन चीजों का व्यवहार करते हुए भजन करें ठीक से। अतः गृही और त्यागी साधक वैष्णव ऐसा विचार करके अत्याहार प्रत्याग करके कृष्ण भजन करके कृष्ण कृपा लाभ करें, इन चीजों को समझना चाहिए। कल से हम अभी तक तो हमने इसके संबंध में बतला, बीच बीच में बतलाते चले, अब इसके बाद में प्रयास और सब चीजें बतलाएंगे बीच बीच में, किंतु कल से हम श्रीमद् भागवत का वो अक्रूर जी ब्रज में आएंगे। ब्रजवासियों की क्या स्थिति है और अक्रूर कृष्ण को किस प्रकार से ब्रज से मथुरा में ले जाना चाहते हैं और उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कैसे सुंदर सुंदर विचार हैं। जे कोई भी जी कोई उत्तम स्थान को छोड़कर के निम्न स्थान में नहीं जाना चाहता, जहां पर जिसको अधिक प्रेम या प्यार मिलता है उस स्थान को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, यह स्वाभाविक है। तो कृष्ण को अवसंवादित रूप में, निश्चित रूप में ब्रज में अधिक प्रेम और सेवाएं मिलती हैं, ब्रज जैसा उनको प्यार कहीं नहीं मिलता, किंतु ऐसे ब्रज को छोड़कर के कम माधुर्य युक्त ऐश्वर्य भूमि में मथुरा में क्यों आए? उस समय में मथुरा वासियों की दृष्टि में ब्रज कैसा है और ब्रजवासियों की दृष्टि से मथुरा कैसा है, ये सब उसमें विचार हैं। हमारे गोस्वामियों ने इन विचारों को बड़ी गंभीरता से लेकर के विचार करके ग्रहण किया है। विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस विषय में बहुत सुंदर रूप से विचार किए। कृष्ण क्यों मथुरा गए, क्या जाने के लिए गए? तो आगे नहीं गए, कुछ दिन में जाकर के चले आते। तो गए सो तो गए, आए ही नहीं। अरे कभी कभी आ जाते, क्यों नहीं आए? ऐसा क्या इस माधुर्य भूमि में त्रुटि हो गई जिसको देखने के लिए एक बार भी नहीं आए? चिट्ठी पत्र भेज दी, उद्धव को और बलदेव को भेज दिया, खुद नहीं आए, क्यों? इत्यादि विचार किया। और जहां पर यह बतलाया गया कि कृष्ण वृंदावन को छोड़कर के कहीं नहीं एक पग भी जाते, तो देखते हैं कि कृष्ण तो मथुरा में आ गए फिर द्वारका चले गए, ये सब का क्या रहस्य? तो वेद शास्त्र क्या झूठे हैं? इन सिद्धांतों को जानने से भक्ति परिपक्व होती है, इसमें सिद्धांत विचार भी आ जाते हैं। यदि इसमें थोड़ा सा भी अनुराग हो जाए, रुचि हो जाए, तो अत्याहार कैसे छोड़ेंगे, प्रजल्प कैसे छोड़ेंगे? अत्याहार प्रजल्प प्रजल्प प्रयास नियमाग्रह ये सब अपने आप हो गया। इन कथाओं में रुचि होगी किसको? थोड़ी सी लोभमयी श्रद्धा के अनुसार में जब इसको देखेंगे तब। और वो लोग इन कथाओं का अधिक आदर करेंगे और उनसे सभी कुछ उनकी सर्वार्थ सीखेंगे। जिन लोगों कभी रुचि नहीं आई है उन लोगों के लिए इसमें रुचि होनी स्वाभाविक है, उनमें रुचि होनी चाहिए। तो जिनकी रुचि है वो करीब करीब हजारों लाखों में एक है, क्या कोटिश्वपी हम, और हम इसी अधिकार के अधिक। इसलिए इन सब का भी अनुशीलन होना चाहिए, बीच बीच में हरि कथा भी होनी चाहिए, कृष्ण की लीला कथा। तब ये बोलते बोलते हमारा भी हृदय थोड़ा सा निरस हो गया, इसलिए कल से हम भी अंततः 4-5 दिन बीच बीच में वो भी करते रहेंगे, हरि कथा लीला कथा प्रातः सब क्या सत्सुरम वो है, ये श्रीमद भागवत एकादश श्रीमद भागवत हरि कथाओं से एकदम परिप्लुत है। इनका भक्त लोग रसास्वादन और सहजी रूप में कृष्ण को प्राप्त करें। तो कल से हम थोड़ा सा ये करेंगे, तो बीच बीच में ये सब हम लोग के लिए उपयोगी है। ये चाबुक है, चाबुक जानते हैं ना, कोड़ा हम साधकों के। सहजिया लोग बड़े डरते हैं इससे, किंतु साधक लोग नहीं डरते। तो आप लोग इन सब चीजों को ख्याल रखते हुए ऐसा ही जीवन चरित्र करते हुए भगवान का शुद्ध रूप में भजन करें। गौर प्रमाण।